Vesselam. Amma ba'da. Ve a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala İbrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. İnni araka ve kavmaka fi zalalim mubin. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری رمضان المبارک میں جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی ایک تھوڑی سی مختلف یا ایک اچھوتی کلاس ہے کہ جس کے اندر دوسرے دنوں کے مقابلے میں کے برخلاف آج کچھ لائیو آڈینس بھی موجود ہے، ورنہ اس آج اس کو تقریباً عادت ہی نہیں ہے اس والی کلاس کے اندر لائیو آڈینس کی ہونے کی سامنے. تو دیکھیں آج کس طرح سے چلتا ہے یہ کہ آن لائن آڈینس بھی ہے اور لائیو آڈینس بھی ہے. بڑا فرق ہوتا ہے کہ اگر صرف آن لائن آڈینس ہو تو پھر آپ کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ آن لائن لوگوں کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور اگر دونوں ہو تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے. بہرحال عادت بھی انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 3 میں سے، اور جو آیات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے حافظ عبداللہ صاحب نے بھی تلاوت کری اور اس عاجز نے بھی ان کو پڑھا، تو وہ آیات نمبر 74 74 سے لے کر کے 81 تک کا مجموعہ ہے جو معروف قرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے. تو اس مجموعے کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور بیان القرآن کی تفسیر جو خلاصہ تفسیر کے عنوان سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ نقل فرماتے ہیں اپنی معروف القرآن میں، بیان القرآن جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، تو ان کی تفسیر کو حضرت نے یہاں پر خلاصہ تفسیر کی ہیڈنگ کے ساتھ نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ تفسیر کے بعد پھر حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ معارف و مسائل بیان فرماتے ہیں، تو وہ ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ان آیات کے. تو ان کے معارف و مسائل پڑھنے کے دوران ہم نے کل ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز جو اس دنیا کے اندر بنائی ہے وہ ماں کیا ہے کہ باطلن ما خلق، سارے بولیں گے تو مجھے نہیں، ربنا ما خلقتا هذا باطلا. یہ ایمان والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ یہ بنایا ہے نا، یہ باطل میں نہیں بنایا، یعنی ایسے بیکار میں نہیں بنایا، فضول میں نہیں بنایا. تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے ساتھ ہے. جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کا کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم جو شخص ہوتا ہے یا جو بھی ہستی الحکیم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فضول میں کوئی کام کر لے، وہ فالتو میں کوئی کام کر لے، وہ اپنا وقت ضائع کر لے، ایسی کوئی چیز بنا دے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت تو الحکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ حکمت کے ساتھ، کسی پرپس کے ساتھ بنایا ہے. تو اب یہ جو انسانی کیفیات بھی بنائی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے ساتھ ہی بنائی ہے. تو ہماری کیفیات میں ایک کیفیت جس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی وہ یہ کہ انسان کے اندر ایک تکبر کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، یا وہ سب سے نہیں بلکہ وہ دوسروں سے بڑا ہے، وہ کسی اور سے بڑا ہے. تو کل یہ بات ہوئی تھی کہ انسان کے اندر جو تکبر کی کیفیت ہے، اس میں بھی اگر یہ شریعت کے دائرے میں رہے، یعنی کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، تو اس میں بھی خیر ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ تکبر جو ہے انسان کو کسی بھی دوسرے ناقص شے کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے، किसी भी दूसरे के सामने अपने आप को झुकाने से, अपने आप को सुपुर्द करने से रोकता है, यानी इबादत के दर्जे में। कल बात हुई थी ना कि इबादत, ये इबादत सिर्फ और सिर्फ इंसान अल्लाह के लिए करे जो कि हर किस्म के नुक्स से पाक है। मैं किसी दूसरे की इबादत करने के लिए तैयार ही नहीं होऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं हर दूसरे से बड़ा अशरफुल मखलूकात हूं, मैं किसी दूसरी मखलूक की इबादत नहीं कर सकता। ठीक है, इबादत सबसे ऊंचा दर्जा है मोहब्बत का। मोहब्बत का सबसे आला दर्जा जो है वो इबादत है, कि इंसान किसी के सामने अपना सर टेक देता है, सर झुका देता है और उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये शदीद तरीन मोहब्बत होती है इंसान की। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए जायज है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जायज है। ठीक है, तो कल ये बात समझाई थी कि ये तकब्बुर इबादत के मामले में ये 100% दुरुस्त कैफियत है कि मैंने किसी के सामने अपने आप को नहीं झुकाना है, मतलब इबादत के लिए नहीं झुकाना है, सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के, जो कि हर किस्म के फॉल्ट से, कमी से, जहालत से, गलती से, कोताही से बिल्कुल पाक है। लेकिन दूसरी बात क्या बयान करी थी, कोई ऑनलाइन या ऑन साइट लोगों में से कोई बताया कि इसका फिर दूसरा साइड क्या बयान किया था, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, किसी को याद है? कि अल्लाह के सामने, किसी अल्लाह के अलावा किसी के सामने हमें इबादत के लिए अपने आप को नहीं झुकाना है। तो इसका दूसरा साइड क्या बयान किया था, मैं कैसे देखूंगा कि क्या मैसेज आ रहा है? चलो यहाँ पे जवाब लेते हैं। ये तो फिर आज बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों को भी जवाब देना चाहिए। कुछ बच्चे लेते हैं माशाल्लाह क्लास, बताएगा नहीं? स्क्रीन नहीं है के नाकिस से इल्म भी हासिल नहीं करना है। ठीक है, इसका फ्लिप साइड क्या है कि शैतान जो कि हम सबका दुश्मन है, वो इस बात को दूसरी तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, हमारे नुकसान के लिए इस्तेमाल करता है। और वो ये कहता है कि जिस तरह तुमने इबादत के लिए सिर्फ अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाना है ना, जो कि बिल्कुल भी नाकस नहीं है, जो कि हर लिहाज से कामिल है, बिल्कुल इसी तरीके से तुम इल्म हासिल करने के लिए भी अपने आप को किसी के सामने नहीं झुकाओ, तुम किसी दूसरे से इल्म हासिल नहीं करो, बस तुम खुद ही, जो अकल है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास दिमाग है, बस तुम अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, अकल को इस्तेमाल करो और खुद ही इल्म हासिल करो, किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई नुक्स है। ठीक है ना, कोई भी कामिल नहीं है, कोई भी जो है वो 100% अलीम और खबीर नहीं है। तो बस तुम अलीम से इल्म हासिल करो। क्या मतलब? जब ये कहता है ना शैतान हमें कि तुम अलीम से इल्म हासिल करो, तो वो दरअसल हमें क्या कह रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि तुम ही अल्लाह के रसूल बन जाओ, तुम ही अल्लाह के रसूल बन जाओ। ठीक है, किसी दूसरे को अल्लाह का रसूल मानने की क्या जरूरत है, किसी दूसरे को पैगंबर, किसी दूसरे को मैसेंजर मानने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही अल्लाह के रसूल बन जाओ। ठीक है, तो काफिर यही करता है। काफिर काफिर क्यों होता है? काफिर काफिर इसलिए होता है क्योंकि वो अल्लाह के रसूल को नहीं मानता। वो कहता है कि मैं खुद अल्लाह का रसूल हूं, मेरा भी तो अल्लाह है, मैं किसी दूसरे से क्यों इल्म हासिल करूं, मैं किसी दूसरे से क्यों सीखूं। ठीक है ना, बस मैं खुद ही अपनी अकल इस्तेमाल करके अल्लाह को राजी कर लूंगा, अकल इस्तेमाल करके अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से मैं अल्लाह को राजी कर लूंगा, मैं जो हूँ जन्नत मानूंगा, मैं अल्लाह का मुकर्रब बन जाऊंगा, मुझे किसी रसूल की जरूरत नहीं है। इस वजह से काफिर जो होता है वो रसूल का इनकार कर देता है कि नहीं, तुम रसूल नहीं, मैं ही रसूल हूँ बस। ठीक है, इसी को कुफर कहते हैं, कुफर और किसी दूसरी चीज को नहीं कहते, इसी को कुफर कहते हैं, अल्लाह के रसूल का इनकार करना और अपने आप को अल्लाह का रसूल समझना। ठीक है, कहता नहीं है कि मैं अल्लाह का रसूल, जरूरी नहीं है कि वो बोले कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन वो समझता है कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैसेजेस कुछ आए हुए थे, देखते हैं कि जो भी इल्म वाले, एक जो भी इल्म वाले हों उसमें थोड़ा भी नुक्स हो उससे इल्म नहीं हासिल करना। ठीक है, तो ये शैतान की चाल होती है, शैतान का धोखा होता है। अच्छा आप क्या कह रहे थे?
बहुत पहले मजलिस में आपने एक बार बताया था कि अगर फायदे की बात हो तो आप वो काफिर से भी ले सकते हैं, तो इस तरह एक और बात की गई होती है कि नाकिस से ले सकते हैं।
इल्म जो है वो तो काफिर से भी लिया जा सकता है, हत्ता के المؤمن, कि जो हिकमत का कलिमा है वो तो मोमिन की गुमशुदा मीरास है. फहीसु मा वजदा फहुवा अहक्कु बिहा, जहां कहीं से भी वो उसको पाए वो ज्यादा हकदार है इस बात का कि वो उस हिकमत की बात को एडॉप्ट कर ले, एक्वायर कर ले, उससे फायदा उठा ले. ठीक है, तो हिकमत की बात जो है वो तो कहीं से भी हासिल की जा सकती है, ठीक है, हत्ता के काफिर से भी. लेकिन इत्तबा जो है वो काफिर के हम नहीं कर सकते, इस वजह से कलिमतुल हिकमत वालतुल मोमिन, जहां भी हिकमत का कलमा मिले मोमिन को वहां से हासिल कर लेना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काफिर अगर कोई हिकमत की बात कर रहा है तो उस काफिर की इत्तेबा भी करनी शुरू शुरू कर दी जाए, उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया जाए. हरगिज नहीं, उसकी बात लेंगे लेकिन उसकी इत्तेबा नहीं करेंगे. इत्तेबा किसकी करेंगे? मन सबीला अनाबा इलैया, मन अनाबा इत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, जो कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है. हमने सिर्फ उसके रास्ते की इत्तबा करनी है, हमने काफिर की इत्तबा नहीं करनी, चाहे वो कितनी हिकमत की बात क्यों ना करे, कितनी अकल की बात क्यों ना करे, कितनी फायदे की बात क्यों ना करे. हमने काफिर के फे काफिर की इत्तबा नहीं करनी, ठीक है. उसको अपना मुक्तदा नहीं बना रहे, उसको अपना लीडर नहीं बना रहे, हरगिज हरगिज नहीं बनाना, ठीक है. तो बहरहाल ये तो चंद बातें कल की क्लास की हो गई, आगे भी हमने थोड़ा सा पढ़ना ही है आज भी, तो इन्हीं आयात की जो है वो मारूफ मसाइल हम पढ़ रहे हैं. जी
इसके नोट्स में पढ़ा था कि जब अगर आपको गलत जगह से सही बात मिल जाए तो वो एक्सेप्शन कहलाएगी और वो दुनिया रूल से चलती एक्सेप्शन से चलेगी।
हाँ, नोट्स में लिखा था, माशाल्लाह आपने पढ़ा कि उसूल तो यही है, रूल तो यही है कि सही इल्म सिर्फ सही सोर्स से ही हासिल होता है, ठीक है. तो इसी वजह से वी हैव टू फर्स्ट वेरीफाई आवर सोर्सेस, कि हम जहां से इल्म हासिल कर रहे हैं वो जगह सही है कि नहीं है, ठीक है. मिसाल के तौर पर इल्म हासिल करना बहुत सिमिलर है इलाज करवाने से, इल्म हासिल करना अपना इलाज करवाने से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता है. क्यों? इसलिए कि इलाज भी जो है ना वो इंसान इल्म के जरिए से कर सकता है. अगर इल्म हासिल हो जाए कि भाई क्या बुराई है, क्या क्या क्या बीमारी की चीज होती है, तो इंसान उससे बचेगा, ठीक है. तो इल्म का इलाज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, इस वजह से इल्म की बात जो है वो इलाज की मिसाल देकर के बड़ी आसानी से समझाई जा सकती है, ठीक है. तो इस वजह से हमारे मशायख ये मिसाल देते हैं कि भाई अगर आपको बीमारी फील हो रही है, आपको आप अपने आप को बीमार फील कर रहे हैं, तो आप अपने घर से बाहर निकलें और जाके देखें कि अच्छा भाई डॉक्टर का बोर्ड कहाँ लगा हुआ है. तो जहां कहीं आपको डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ नजर आए वहां पे जाकर के आप अपना इलाज करवाना शुरू कर देंगे? नहीं, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क, ठीक है. क्या पता भाई वो सच्चा डॉक्टर है, क्या बताइए वो, क्या पता भाई वो कोई क्विक है. क्विक कहते हैं झूठे, ऐसे बैठ कर पहलवान हमारे यहाँ ऐसे बैठे आते हैं कि भाई हम आप आए, हम आपकी हड्डी जो है ना वो दुरुस्त कर देंगे, हड्डी ठीक कर देंगे, वो पहलवान बैठे होते हैं. तो आप जाकर के पहलवान साहब से अपनी हड्डी पता चला उन्होंने आपकी हड्डी तोड़ करके रख दी, ठीक है. तो पहले चेक करते हैं कि इस काम आता है कि नहीं आता है, इसके पास कोई वेरिफ कोई सनद है, कोई है इसके पास डिग्री वगैरह है कि नहीं है. आप ऐसी तो नहीं जाकर के इन हासिल करना शुरू कर देते ना, आप अपना इलाज करवाना शुरू कर देते ना. बिल्कुल इसी तरीके से इन जो है वो पहले चेक करना होता है कि कहाँ से हासिल करना है, ठीक है. अगर सच्ची और सही सोर्स है फिर वहां से इल्म हासिल करेंगे, वरना इल्म हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि रूल यही है कि सही सोर्स से ही सही इल्म मिलता है. लेकिन कभी ऐसा होता है एज एन एक्सेप्शन, इस्तिस्नाई तौर पर, कि किसी गलत जगह से भी आपको काम की बात मिल जाती है, जैसे काफिर से, ठीक है. काफिर कोई सही सोर्स नहीं है इल्म हासिल करने की, लेकिन वहां से कोई काम की बात मिल गई, लेकिन इसको आप रूल नहीं बनाएंगे. अच्छा, काफिर से मुझे कोई सही इल्म मिल गया, अब तो मैं काफिर के पास ही जाकर के अपना इल्म हासिल करूंगा. नहीं, बल्कि ये एक एक्सेप्शन है, आप उसको एक्सेप्शन के तौर पर ही ट्रीट करेंगे. अभी हो गया एक दफा, ठीक है भाई, लेकिन इल्म तो मैंने सही सोर्स से ही हासिल करना है, बस ये उसूल है. हमने उसूल पर जिंदगी गुजारनी है, हमने एक्सेप्शन की बुनियाद पर थोड़ी अपने फैसले करने हैं जिंदगी के. तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने आगे फरमाया था कि मुबल्लिगीन इस्लाम के लिए चंद हिदायात, जो दावत और तबलीग का काम करते हैं दीन इस्लाम की, उनको मुबल्लिगीन कहते हैं, ठीक है. मुबल्लिगीन क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? मुबल्लिगीन दावत और तबलीग का काम करने वाले को मुबल्लिगीन क्यों कहते हैं, जो सर पढ़ रहे हैं नौजवान हजरात, वो अगर इसका जवाब दे। तो यही मसला होता है कि वो
जी
अलग अलग देखना पड़ता है। मुबल्लिग क्यों कहते हैं? बलात ऐसे जी सर साहब आप,
जी
हाँ, जो तबलीग करता है ना उसको मुबल्लिग कहते हैं। बल्लगा युबल्लिगो तबलीगन वहुआ मुबल्लिगुन, ठीक है। सर पढ़ने वाले साथी सब जानते हैं कि ये इसम फाइल का सीगा है, मुबल्लिगुन, ठीक है। तो तबलीग का मतलब क्या होता है? बात को आगे पहुंचाना, इसको कहते हैं तबलीग करना। तो मुबल्लिग वो होता है जो कि बात को आगे पहुंचाए। कौन सी वाली बात को? जो अच्छी बात उसने अपने बड़ों से सीखी है उसको वो आगे पढ़ पहुंचाए, उसको मुबल्लिग कहते हैं। तो मुबल्लिगीन इस्लाम के लिए चंद हिदायात में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस तर्ज मुनाजरा से उलमा व मुबल्लिगीन के लिए चंद अहम हिदायात हासिल होती हैं, ठीक है। यानी ये जो मुनाजरा है, तो उन्होंने एक एक बात करी ना काफिरों से कि तुम जो बुतों से बुतों की परस्तिश करते हो, ये तो मैं तुम्हें इन्नी नराका फी ज़लालिन मुबीन, मैं तुम्हें खुली हुई गुमराही में देखता हूँ। ये क्या बेवकूफी की हरकत कर रहे हो? खुली गुमराही के बुत है ये, क्या ये कैसे जो इबादत के लायक हो सकते हैं? तो ये सारा मुनाजरा चल रहा था। फिर सितारों के बारे में बात करी, फिर चांद के बारे में बात करी, फिर सूरज के बारे में बात करी, ठीक है। तो ये जो मुनाजरा चल रहा था, तो उससे क्या हिदायत मिलती है? अव्वल ये कि कौमों की तब्दील व इस्लाह में ना हर जगह सख्ती मुनासिब है और ना हर जगह नरमी मुनासिब है, ठीक है। जब आप किसी की तरबियत करते हैं, इस्लाह करते हैं, तो उसमें सिर्फ नरमी से इस्लाह करना, हर वक्त नरमी से इसलाह करना ये बात भी मुनासिब नहीं है, और हर वक्त सख्ती से इसलाह करना ये बात भी मुनासिब नहीं है। बल्कि मौके महल के हिसाब से कभी सख्ती की जरूरत पड़ती है, कभी नरमी की जरूरत पड़ती है, और कभी जो है वो एक न्यूट्रल मामला, ठीक है। न्यूट्रल यानी दरमियान दरमियान में चल रहा है मामला, ठीक है। तो सख्ती से भी जो है वो नुकसान होता है और बहुत ज्यादा नरमी से भी नुकसान होता है। नरमी से क्या नुकसान होता है कि देन पीपल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, ठीक है। वो ये समझते हैं कि हाँ भाई जो चाहो करो, इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ कहना ही नहीं है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जो चाहो करो, ठीक है। तो नरमी से जो है वो नुकसान होता है और फिर तरबियत तो नहीं हो पाती इस तरीके से, सही है। तो बच्चों की भी, यहाँ तो माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, तो अगर अम्मी अब्बू सख्ती करते हैं तो वो आपके फायदे की बात होती है, ठीक है। हर वक्त अगर आपके साथ नरमी करेंगे तो फिर आप समझेंगे कि अच्छा बस हर मैं जो भी करूं वो सब ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको ठीक होने की जरूरत नहीं महसूस होगी कभी। तो ना हर जगह सख्ती मुनासिब है, ना हर जगह नरमी, बल्कि हर एक का एक मौका और एक हद है। चुनाचे बुत परस्ती के मामले में हजरत खलीलुल्लाह यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, ठीक है। इसी एक कॉन्वर्सेशन के अंदर जो काफिरों से हुई, उसमें बुत परस्ती के मामले में सख्त अल्फाज इस्तेमाल, ठीक है, कि इन्नी नराका फी ज़लालिन मुबीन, ये बड़े सख्त अल्फाज, मैं तुम्हें खुली हुई गुमराही में देखता हूं, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसकी गुमराही मुशाहिदे में आने वाली चीज है, और नजूम परस्ती के मामले में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं फरमाया कि बुत परस्ती, बुतों की परस्तिश कर रहे हो यार, ये तो मक्खी भी नहीं उड़ा सकते अपने ऊपर अगर बैठ जाए तो, ये तो जो है वो किसी को उनको जाके थप्पड़ मार करके आ जाए तो ये उसको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये तो किसी को नफा नहीं पहुंचा सकते, किसी को नुकसान तो क्या पहुंचाएंगे, अपने आप को नहीं बचा सकते नफे और नुकसान से, या नुकसान से नहीं बचा सकते, ठीक है। तो ये तो इसके लिए क्योंकि बिल्कुल क्लियर बात थी ना, तो बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि भाई ये बंद करो, ये तुम ये बेहूदापन, ये बेवकूफी की हरकतें, ये तुम बंद करो, ठीक है। इस तरीके से गोया कि उन्होंने बात करी, जाहिर उर्दू में तो बात नहीं कर रहे थे, तो वरना वो शायद ये वाले अल्फाज या तरह के कोई अल्फाज कहते, उन्होंने अरबी के अल्फाज इस्तेमाल किए, हम तो उर्दू में समझा रहे हैं इस तरीके से खाली। लेकिन नुजूम के मामले में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। नुजूम किनको कहते हैं? सितारों को, कौकब, ठीक है, और चांद और और सूरज भी फिर इसी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि ये चांद और सूरज और नुजूम, ठीक है, कल एक और भी बात हुई थी शायद कल या परसों की क्लास में, कि ये जो दो माबूद कैटेगरीज, माबूदों की जो दो कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई थी ना, इनमें देखें एक जो है वो एक एक्सट्रीम पे थी और दूसरी जो है वो दूसरी एक्सट्रीम पे। फिजिकली भी देखें तो बुध किस चीज से बनते हैं या बुध कहाँ पे रखे होते हैं, बुध जो है वो जमीन पे रखे हुए होते हैं और जमीन से बने होते हैं, अर्थ से बने होते हैं, मिट्टी से बने हुए होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा जो है वो किसी मेटल से बने होंगे। मेटल कहां से निकलता है? जमीन के अंदर से निकलता है, ठीक है। और सूरज चांद सितारे ये कहां पर है? ये उसको देख, उनको देखने के लिए आपको ऊपर देखना जरूरी है, ऊंचा देखना जरूरी है। ये नीचे देख करके आपको सूरज चांद सितारे नजर नहीं आएंगे, ये सामने देख करके आपको सूरज चांद, इनको ऊपर देखना पड़ेगा। तो ये इंतहाई दूसरी इंतहा पर है, दूसरी एक्सट्रीम पर है, और एक जो बुद्ध थे इनके, एक जो महाबुद्ध थे इनके, दूसरे एक्सट्रीम पर थे, ठीक है। तो उनके मामले में ना, नजूम परस्ती के मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं फरमाए, बल्कि एक खास तदबीर से मामले की हकीकत को कौम के जहन नशीन फरमाया, बड़ी तदबीर इख्तियार करी, ठीक है, बड़ी प्लानिंग से, बहुत सोच और फिक्र के साथ जो है ना वो नुजूम के बारे में कौम को समझाया। क्यों? क्योंकि सैयारों और सितारों का बेबस और बेइख्तियार होना इतना वाजह और खुला हुआ नहीं था जितना खुद तराशीदा बुतों का। सितारों और सैयारों का बेबस होना, तो भाई सितारे और सैयारे जो हैं ये तो बहुत बड़ी बड़ी मखलूक हैं, इतना तो उस जमाने के लोगों को भी पता था, बिल्कुल ही जाहिल नहीं थे उस जमाने के लोग, ठीक है। हम समझते हैं कि शायद सारा इल्म हमें अब आया है 20th सेंचुरी में आकर के, ठीक है, या 19th सेंचुरी में जो है वो गोरों ने इल्म सीखा पहली दफा दुनिया में, पहली दफा इल्म जो है वो गोरों ने सीखा यूरोप में, और फिर हमने उनसे सीखा 20th सेंचुरी में आकर के। उससे पहले तो लोग सिर्फ जाहिल होते थे, कुछ आते ही नहीं था उनको, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उससे पहले बहुत ज्यादा इल्म वाले लोग मौजूद होते थे, और बड़ी बड़ी उसकी जो है वो एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर कितना ज्यादा इल्म था, इवन पर्शियन सिविलाइजेशन के अंदर, इवन चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर, इवन हिंद की सिविलाइजेशन के अंदर, इंडिया की सिविलाइजेशन के अंदर कितना ज्यादा इनके पास उलूम थे। इन्होंने जो चीजें बनाई थी वो आज भी मौजूद है, ये अहराम मिस्र, पिरामिड्स जो हैं, और भी बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन जो है वो हजारों हजारों साल पुरानी। हमारे यहाँ तो वो मोहनजोदड़ो कुछ होते हैं उसके ऊपर, अल्लाह का अदाब आया था लेकिन उसको खुश होते हैं मोहनजोदड़ो के ऊपर, ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो बनाया था कितने हजार साल पहले लोगों ने बनाया था ना, तो वो इल्म से ही बनाया था, ऐसे कोई जादू टोने के जरिए से नहीं बना दिया था। तो उनको इतना अंदाजा था कि ये जो चीजें इतनी छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये डिस्टेंस की वजह से, डिस्टेंस का अंदाजा था इन लोगों को कि ये बहुत दूर है, इस वजह से इतनी छोटी नजर आई है। क्या मतलब कि अगर ये हमारे करीब होती तो इनका साइज बहुत बड़ा होता, इनका साइज बहुत बड़ा होता, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि सितारों और सैयारों का ना ये तो बड़ा होना, बहुत बड़ा होना इन लोगों के ऊपर वाजे था। तो अब ये कहना कि भाई ये तुम्हारे माबूद नहीं है, ये इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत प्लान तरीके से जो है वो दावत तबलीग का काम किया था। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल जहन में आता है कि कुरान मजीद किताबे हिदायत है, सही है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं। हिदायत का मतलब क्या होता है? कि अपने लिए डिटरमिन कर सकें कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, और अपने लिए हम फैसला कर सकें हिदायत की रोशनी में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और क्या चीज हमें ज्यादा करनी चाहिए, इसी को हिदायत कहते हैं। तो कुरान मजीद से तो हम अपने लिए हिदायत हासिल करने के लिए कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, हम यहां पर जो है वो ग्रेड्स किसी टेस्ट में रट्टा लगा करके या इंफॉर्मेशन हासिल करके कि हम किसी दुनिया के किसी एग्जाम में बैठेंगे और वहां पे एमसीक्यूज का सही आंसर दे देंगे ताकि हमारे अच्छे ग्रेड्स आ जाए, या अच्छा जो है मजमून लिख देंगे ताकि हमें जो है वो अच्छा A+ मिल जाए, A स्टार मिल जाए, इसलिए कुरान मजीद नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम जो है वो स्टोरी एंटरटेनमेंट के खातिर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं कि भी अच्छा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी स्टोरी पता चल जाएगी मुझे, तो मैं दूसरे बच्चों को जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाऊंगा, या मैं अपने छोटे बच्चों को अम्मा अब्बा जो है वो रात को सुलाने के लिए लोरी देते हैं ना, तो लोरी में जो है वो स्टोरी सुना देंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इस वजह से तो हम नहीं पढ़ रहे, हम तो हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है कि उन्होंने नुजूम और सूरज चांद के बारे में जो अपनी कौम को समझाया, तो वो इस अंदाज में समझाया, इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है? हमें इससे क्या फायदा हासिल हो रहा है? हम तो सूरज चांद सितारों की परस्तिश नहीं करते हम, ठीक है, हम तो नहीं करते ना। तो फिर इज दिस इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस? क्या ये बस ऐसे ही खामखा टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, या ये कि मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में, या सवाब हासिल करने के लिए जैसे तिलावत करते हैं उसी तरीके से सवाब हासिल करने के लिए हम तफसीर पढ़ रहे हैं? नहीं, सिर्फ सवाब हासिल करने को, सवाब तो अल्लाह ताला देगा, लेकिन हम हिदायत, तो हिदायत क्या है, क्या हमारे लिए रेलेवेंस है इसके अंदर? हम तो सूरज चांद सितारों की परस्तिश नहीं करते। फिर जी कोई बताएगा? पहले आरिफ अंकल से कुछ।
ऑडियंस को देखते हैं उसके हिसाब से।
एक तो इसके अंदर हिदायत ये मिल रही है, ठीक है, कि भाई ऑडियंस के हिसाब से बात कर ले, एक तो ये हिदायत मिल रही है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है, यानी अब इस वक्त मैं सवाल करूं, ये कर रहा हूं कि सूरज चांद सितारे तो नहीं है हम हमारे माबूदों में शामिल, ठीक है, तो फिर एक मिनट अब्दुल्ला भाई।
भूटान मुसलमान तो उनके साथ तब्दील करने के लिए इस्लामी हिदायत मिलती है कि दोनों तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, जो जैसे कवाकिब हैं उनका जो है इतना जाहिर नहीं है ये बात कि ये जो है हमारे माबूद नहीं हो सकते, तो वहाँ नरमी और हिकमत से मामला लिया गया मेरे सामने। और
अच्छा ठीक, वो वही जवाब आपने दिया जो कि आरिफ अंकल ने भी दिया। किसी और ऑनलाइन में से कोई और कह रहा था? चलिए डॉक्टर जी, क्रिटिकल
क्रिटिकल थिंकिंग
थिंकिंग सीखने के लिए। अच्छा और ट्राई कर लें, फिर मैं सवाल को थोड़ा सा और रिफ्रेज भी करता हूँ जी।
सिस्टम और वसाइल असबाब एजुकेशन उनकी कंप्यूटर और इनकी कंप्यूटर
जी माशाल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पेश आई। और यहाँ पे ऑनलाइन भी कुछ ऐसा ही जवाब वाल बनाया, मैं पढ़ लेता हूँ कि वी आर वर्शिपिंग टुडेज एजुकेशन सिस्टम लाइक द पीपल यूज टू वर्शिप सन मून एंड स्टार्स, ठीक है। तो मेरा वैसे अगला रिफ्रेश करने, इस सवाल को रिफ्रेश करके मैं क्या कहता आपसे, मैं ये कहता कि हमारी जिंदगी में सूरज चांद सितारे कौन है? 21st सेंचुरी के सूरज चांद सितारे कौन है, या इवन 20th सेंचुरी के, बल्कि 19th सेंचुरी के भी, बल्कि 18th सेंचुरी के भी, ठीक है, चले 21st सेंचुरी के सूरज चांद सितारे कौन है? ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जाली निजाम, ये इस दौर के सूरज चांद सितारे हैं। कैसे? ठीक है, एक तो ये हो गई ना कि यूं करके देखते हैं ना सूरज चांद सितारे को ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से हम गोरा साहब को, यूरोपियन साहब को, अमेरिकन साहब को, हत्ता कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच जाए तो वो ऑस्ट्रेलियन साहब को, या साउथ अफ्रीका पहुंच जाए तो साउथ अफ्रीका में भी, जहां पहुंच जाए, या वो हमारे घर में आ जाए, या हमारे मुल्क में आ जाए, गोरी मेम अगर आ जाए तो फिर वाह क्या बात है, राइट, खुश हो जाते हैं, गोरी मेम आ गई भाई, बेटे की शादी गोरी मेम से हो गई, बहुत खुशी की बात होती है इसको, ठीक है, क्योंकि वी लुक अप टू देम, ये हमारे कौकब हैं, ये हमारे सितारे हैं, ये हमारे सैयारे हैं, हम इनकी कदर करते हैं, हम इनकी अजमत के कायल हैं, राइट। और खाली कायल जो है वो ऐसे नहीं है बेवकूफी, यानी जैसे बुतों के कायल होते हैं, भाई बुत के कायल क्यों हो तुम, अजमत के बुत क्या कर सकता है, नहीं, बल्कि इनके जो हम कायल हैं, वी हैव गुड रीजन फॉर इट, रीजन है हमारे पास कि हम इनकी अजमत के क्यों कायल हैं, इसलिए कि इन्होंने एटम बम बनाया है, इन्होंने जो है वो स्पेस प्रोग्राम बनाया है, इन्होंने जो है वो साइंटिफिक रिसर्चेस करी हैं, इन्होंने मेडिकल साइंस को तरक्की दी है, इन्होंने जो है वो एयरक्राफ्ट बनाया है, इन्होंने जेट इंजन बनाया है, इन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं, इन्होंने इवन इलाज मुआलजे की जो है वो टेक्नोलॉजी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, ठीक है। तो वी हैव गुड रीजन टू लुक अप टू देम, वी हैव गुड रीजन टू लुक अप टू देम। इनकी नफी करना वैसा आसान नहीं है जिस तरह से किसी हिंदू बुत परस्त की जो है वो नफी करना आसान है जितना, इनकी नफी करना इतना आसान नहीं है। इस वजह से मैंने हमेशा जो है वो अपने हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि हिंदुओं को तो वो घास ही नहीं डालते थे ना हजरत जी को, राइट, इस काबिल नहीं समझते कि यार इनके ऊपर भी क्या इनकी इनकी ये इनका क्या करना है। लेकिन हजरत जी का इतना फोकस होता था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, यूरोप अमेरिका के ऊपर, इनकी नफी करने के ऊपर, इनकी बात समझाने कि भाई ये तुम, ये दजल है, ये फरेब है, इनकी जो बड़ाई तुम्हें नजर आ रही है ये बड़ाई ऐसे नहीं है जैसे कि तुम समझ करके बैठे हो, ठीक है। तो हमारे जमाने के सूरज चांद सितारे ये हैं और इनका बनाया हुआ निजाम। अब ये का मतलब कोई थोड़ी कि कोई गोरा सामने खड़ा हुआ है तो हम उसकी इबादत शुरू कर देते, नहीं, गोरे का बनाया हुआ निजाम, गोरे का तालीमी निजाम, गोरे का मुआशरती निजाम, गोरे का जो है वो सोशल सिस्टम, गोरे का इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम, हर चीज, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर, ऑफ कोर्स फायदा भी हो रहा होता है उसकी वजह से ना, फायदा तो हो रहा है ना उनके, आपके जो है वो ट्रैफिक सिस्टम होता है उससे आपके ट्रैफिक सही हो जाती है, उनका जो है वो गाड़ियां बनाई हुई होती हैं। आप देखें दुनिया के अंदर जितने एयरक्राफ्ट हैं चाहे वो चाइना का हो चाहे रशिया का हो, बड़े दुश्मन बनते हैं आपस में एक दूसरे के, झूठ बोलते हैं दुश्मन, कोई दुश्मन दुश्मन नहीं होते ये आपस में, ठीक है। चाइना का जो है वो बेहतरीन एयरक्राफ्ट आता है, देखा है कभी चाइना का बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैसा लगता है वो चाइना ने कोई चीनी बोलता हुआ एयरक्राफ्ट बनाया हुआ होता है क्या, है कि वो चीनी बोलता है, चीनी जुबान बोलता है, वो उसकी शक्ल सूरत जो होती है वो चीनी आर्किटेक्चर के मुताबिक होती है, नहीं, एब्सोल्युटली वही जो अमेरिका का, कोई फर्क होता है अमेरिका के एयरक्राफ्ट और चाइना के एयरक्राफ्ट के अंदर? चलो रशिया दुश्मन बहुत बड़ा दुश्मन है, कोई फर्क है रशिया के इन चीजों के अंदर और अमरीका के चीजों के अंदर, ठीक है। तो इस वक्त जो है वो सूरज हादा रब्बी हादा अकबर, कौन है हादा रब्बी हादा अकबर, सबसे बड़ा, चाइना को आप कह रहे हैं नजूम है, यूरोप को आप कह रहे हैं कमर है, अमेरिका क्या है आधा रब्बी आधा अकबर, सबसे बड़ा तो ये है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत सारी रेलिवेंसीज हैं इसके अंदर, खाली ये नहीं कि बात करने का अंदाज आ जाए बल्कि हमें ये भी पता चाहे आज के जमाने में हमने किनको बनाया हुआ है अपना खुदा। तो अब इनके इनकी बुराइयां बयान करना वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए हम तैयार नहीं है, जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मुश्किल काम है, उसके लिए जरा आपको अकल समझ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जरा तदब्बुर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जरा मवाद इकट्ठा करना पड़ेगा इनकी नफी करने के लिए, और वो हम नहीं कर पा रहे, हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, सही मानों में हम नहीं कर पा सकते। हजरत जी ने अलहमदुल्ला करी, बड़ी जबरदस्त तरीके से करी, लेकिन अब हजरत जी दुनिया में नहीं है, अब तो हम, हमारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आ गई है ना, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहनत करी सूरज चांद सितारों की नफी करने के लिए, ठीक है। तो फरमाया कि चूंकि सितारों और सयारों का बेबस और बेख्तियार होना इतना वाजह और खुला हुआ नहीं है, जिस तरह अमेरिका का बेबस होना कोई खुला हुआ नहीं है कि अमेरिका बेबस है, वहां तो पागल हो गया, अमेरिका बेबस है कहां से बेबस है भाई, ठीक है। तो जितना के खुद तराशीदा बुतों का बेबस होना वाजह था, इससे मालूम हुआ कि अवाम अगर किसी ऐसी गलती में मुबतला हो जिसका गलती और गुमराही होना आम नजरों में वाज़ह ना हो, तो आलिम और मुबल्लिग को चाहिए कि तशद्दुद की बजाय उनके शुबहात को दूर करने की तदबीर करे, ठीक है। तशद्दुद का रास्ता अख्तियार ना करे कि मानो मेरी सुना में तुम्हें डंडा लगाऊंगा, राइट, नहीं, ये नहीं करना, बल्कि तदबीर अख्तियार करनी होती है उसके लिए। आलिम का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जो मदरसे में 8 साल का जो है वो दरसे को निजामी कर लेता है वो आलिम, बल्कि इल्म वाला, ठीक है। अब अगर हमने दरसे निजामी किया तो हम ये नहीं, नहीं मैं तो आलिम नहीं हूँ, उस पर मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, समझ दी है, तो उसको अब इस इल्म को कंपाइल करने में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेबल बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हम सब उसके अंदर शामिल है, ठीक है। और मुबल्लिग का मतलब जो बात पहुंचाने की का रोल प्ले कर रहा होता है, जिसको उसके बड़ों ने हुक्म दिया होता है कि तुम ये काम करो, तबलीग का काम करो, ठीक है, तो वो मुबल्लिग होता है। अच्छा, दूसरी हिदायत इसमें यह है कि इजहार हक व हकीकत के लिए इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को यूं खिताब नहीं किया कि तुम ऐसा करो, ठीक है, कि तुम छोड़ दो इनकी इनकी परस्तिश छोड़ दो, इनको अपना इबाद माबूद बनाना छोड़ दो, ये नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उन्होंने अपना हाल बतला दिया, अपने आप को बतौरे मॉडल के सामने पेश कर दिया, ठीक है, कि मैं तो इन तुलू व गुरूब के चक्कर में रहने वाली चीजों को माबूद करार नहीं दे सकता, ठीक है, इसलिए मैंने अपना रुख एक ऐसी हस्ती की तरफ कर लिया है जो उन सब चीजों को पैदा करने वाली और पालने वाली है। मकसद तो यही था कि तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए, मगर हकीमाना अंदाज में सरीह खिताब से परहेज फरमाया ताकि वो जिद पर ना आ जाए, ठीक है, यानी मकसद तो उनका यही था कि भाई बंद करो ये, तुम क्या तमाशे लगा रखे हो तुमने ना, चांद सूरज सितारे की परस्तिश करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा, मतमाए नजर दिल में उनका यही था कि बंद कर दो इस शिर्क को, लेकिन इसको अल्फाज में बयान नहीं किया। उसी तरीके से हम अपने मशायख को भी देखते हैं, बहुत सारी बातें जो है ना वो अल्फाज में बयान नहीं करते, बल्कि वो दूसरे पैराए में दूसरे एंगल से बात कर रहे होते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, लेकिन जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात उन लोगों ने मानी नहीं, उसी तरीके से आज भी ये नहीं होता कि मशायख बड़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं तो हर बंदा मान भी लेता है उस बात का, ऐसा तो नहीं होता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कौन सी हर एक ने मान ली, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना काम पूरा किया, बिल्कुल जैसे हमारे मशायख अपना काम पूरा करते हैं, हमें भी अपना काम पूरा करना है। दूसरी बात ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करता, तो हम आपसे एक सवाल करते हैं कि अभी आप जरा यहां से बाहर निकले सड़क पे जाए, ठीक है, तो सड़क पे कोई शख्स गुजर रहा हो और कहे कि मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो ऐसे नहीं करता, इस वजह से तुम भी ऐसे नहीं करो, तुम भी ऐसे नहीं करो, तो आप उसको लिफ्ट कराएंगे, आप उसको सीरियसली लेंगे कि हाँ भाई अच्छा ये ऐसा नहीं करता, तो लेट मी फाइंड आउट कि ये ऐसा नहीं करता, क्यों ऐसा नहीं करता, तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे कि ये नहीं कर रहा। आप कहेंगे भाई तू कौन, तुम कौन हो भाई, व्हाई शुड आई इवन लिसन टू यू, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं, मैं तुम्हारी एग्जाम्पल को क्यों फॉलो करूं ना, तुम तो सड़क पे से गुजर रहे हो और आई डोंट इवन नो यू, और मैं तुम्हारी इज्जत तो नहीं करता कि मैं तुम्हारी एग्जाम्पल को भी फॉलो करूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कही कि मैं ऐसा नहीं करता, तो इसका मतलब क्या था, कि बस ऐसे ही कोई अननोन शख्स उठा करके, अननोन थे और ऐसे ही जाकर के उन्होंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, या ये कि चलो अननोन ना भी हो, ठीक है, सड़क पे कोई शख्स हमें मिला वो तो अननोन था ना, लेकिन अगर जो है वो कोई घर में जो है वो पोछा देने के लिए मासी आती हो, ठीक है, या बाथरूम साफ करने के लिए कोई जो है वो आपका हाउस बॉय आता हो, एक दिन वो ये कहना शुरू हो जाए कि मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करता, इस वजह से आप भी ऐसे नहीं करें, आप भी ऐसे नहीं करें, तो आप उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, भाई मैं तुम्हारी एग्जाम्पल क्यों फॉलो करूं यार, ठीक है, तो तुम नहीं करते तुम्हारी मर्जी नहीं करो, मैं क्यों तुम्हारी एग्जाम्पल को फॉलो करूं, क्यों, इसलिए कहेंगे ना इसको ऐसी बात कि भाई आपके दिल में कोई उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं है ना, उसका तो कोई मकाम नहीं है ना, वो तो एक काम करने के लिए, 2 कौड़ी का काम करने के लिए आया, उसके बाद वो चला जाएगा, इंपॉर्टेंस तो नहीं है उसकी ना आपके जहन में, इस वजह से उसका ये कहना जो है वो कोई अहमियत ही नहीं रखता, वो बेवकूफ इंसान है, वो अब आपको अपनी एग्जाम्पल पेश कर रहा है, क्योंकि उसकी एग्जाम्पल की कोई हैसियत ही नहीं है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे बात कर रहे थे कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी और वो खामखा ऐसे ही बोलना शुरू हो गए, मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करता, नहीं, बल्कि दोनों चीजें यहां पे मौजूद थी। नंबर वन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज नॉट समवन अननोन टू द पीपल, वो कोई अजनबी नहीं थे उस मुआशरे के अंदर, ठीक है, कि बस ऐसे ही एक दिन आकर ये कहना शुरू कर दिया मैं ऐसे नहीं करता तो तुम भी ऐसा ना करो, और दूसरी बात ये कि वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे उस मुआशरे के अंदर कि जिसकी कोई इज्जत ही ना हो, जिसकी कोई अहमियत ही ना हो, कोई वैल्यू ही ना हो, ठीक है, तो वो नोन भी थे, वेल नोन पर्सन भी थे और उनकी इज्जत भी थी मुआशरे के अंदर, ठीक है, तो क्या मतलब कि जो मुबल्लिग होता है ना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबल्लिग थे, तो उन्होंने पहले जो है वो मुआशरे के अंदर घुल मिल करके अपना मुकाम बनाया था, मुआशरे वालों में वो कोई बाहर से नहीं आए थे, वहीं के लोगों में से थे ना, लोग जानते थे उनको, और लोग उनको एक अच्छी शख्सियत के तौर पे जानते थे कि भाई ये नेक है, ये साले हैं, ये सच बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ठीक है। इनकी जिंदगी जो है वो एक अच्छी जिंदगी है। हर नबी का यही मामला था, बल्कि ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला नहीं था, हर नबी ऐसा ही होता था, ठीक है, कि लोग कि वो अच्छी जिंदगी गुजारता था। फिर वो जब बात करता था तो फिर एक हुज्जत होती थी कि भाई अब तुम मेरी बात भी तो मानो, जब तुम मेरी वैसे इतनी इज्जत करते हो तो तुम मेरी बात भी मानो, ठीक। तो मुबल्लिग के लिए अपने आप पे मेहनत करना, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, ये सबसे अहम काम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और नुकता है इसके अंदर बहुत अहम जो है ना, वो क्या है कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज चांद सितारों के बारे में इतनी मेहनत करी कि भाई बड़ी प्रॉपर तरीके से, प्लान तरीके से वो उनके साथ बात करी, आर्गुमेंटेशन पेश करी उनके सामने, ठीक है, जबकि बुतों के मामले में सब कुछ नहीं किया, सही। तो एक तो बात हमने कर ली ऑलरेडी कि हमारे जमाने में ये जो चांद सूरज और सितारे हैं, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आजकल एक नई किस्म की एक पौध निकली है, पौध समझते हैं, पौध उसको कहते हैं, नस्ल, नई नस्ल, ठीक है। ये नई नस्ल बड़ी डिफरेंट है पिछली नस्ल से, आजकल इसको जनरेशन जी का नाम भी देते रहते हैं लोग, कोई ना कोई जनरेशन का नाम देते रहते हैं, कभी किसी जनरेशन एक्स कह देते हैं, कभी किसी जनरेशन जो है वो पता नहीं वाई कह देते हैं, फिर आजकल जो है वो जी कह दिया है इन्होंने। हम तो इनका तो डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, हम ये नहीं कह रहे कि जनरेशन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन ये एक बड़ी यूनिक जनरेशन है एक और एतबार से भी। वो क्या कि इस जनरेशन से पहले जो जनरेशन होती थी ना, तो उसमें दो किस्म के लोग होते थे। एक वो होते थे कि जो कि बहुत दीनदार, मदरसा क्राउड जिसको कहते थे, ठीक है, या कुछ जो है वो जो तब्दीली जमात के वास्ते से फिर मदरसा क्राउड से जुड़े होते थे, या खानकाहों में मशाइख के साथ जुड़े हुए, ये तो बहुत कम तादाद में ऐसे लोग होते, ठीक है, बहुत दीनदार लोग, सही है। या दूसरी कैटेगरी क्या होती थी, दूसरी कैटेगरी होती थी जो के बहुत ज्यादा दुनियादार लोग, ठीक है, और वो वही कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल एजुकेटेड, और वो फिर खुल करके जो है ना वो दीनदारों को बुरा भला कहते थे, ठीक है, और बहुत जो है वो यानी गली सड़ी सुनाते थे उनको, और कहते थे तुम बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल इसकी जो है ना वो नहीं है जरूरत, तुम क्या क्या कर रहे हो ना, मतलब मुझे याद है कि आप लोगों के सामने पहले भी जिक्र हुआ है कि आज जब अमेरिका में रहता था तो शुरू शुरू में जो है वो बोस्नियन मुस्लिम्स के साथ जो है बहुत अल्लाह ताला ने काम करने की तौफीक अता फरमाई थी। बोस्नियंस जो है वो पिट पटा करके मर मरा करके वहां से जो है वो अमेरिका आ गए थे, और अमेरिका के अंदर उनको नेशनैलिटी भी दे दी गई थी, और जॉब शॉप भी वो सब कर रहे होते थे वहां पर। तो इस्लाम का तो उन लोगों को ज्यादा पता नहीं होता था, बेचारों को अक्सर को तो कलमा भी नहीं आता था, कुरान शरीफ पढ़ना तो किसी को भी शायद नहीं आता था, बहुत बुरा हाल था ना इस्लाम के एतबार से उनका। तो इस आदिस ने जो है वो एक छोटा सा मकतब बनाया, बिल्डिंग की बेसमेंट एक मिल गई तो वहां पर जो है ना वो मकतब बनाया, तो माशाल्लाह काफी बच्चे उन्होंने भेजने शुरू, तो था उनके दिल में हाँ भाई हम मुसलमान है, पता वाला कुछ नहीं था इस्लाम के बारे में, लेकिन हाँ हम मुसलमान है तो मकतब भेजना चाहिए बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह मकतब में आने शुरू हो गए, आज बैठ करके उनको अलिफ बा ता सा कुरानी कायदा जो है पढ़ाने शुरू हो गया। तो एक दफा जो है ना वो उन बच्चों में से किसी का कोई अंकल वंकल आया ना, ठीक है, वो आकर के उसने देखा अच्छा इतने सारे बच्चे अमेरिका में आकर के भी जो है वो अलिफ बा ता पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ना वो चूंकि मकतब की एक शक्ल देनी थी, तो मैंने दीवारों के ऊपर कुछ मिलता था तो वो लगा देते थे इस किस्म का, तो वो मैप्स मिल गए थे कि इस्लामिक वर्ल्ड ग्रीन में होती है और बाकी जो है वो रेड में होती है, और वो था पॉपुलेशन के हिसाब से फिर वो कलर्स उसमें लगे हुए होते हैं, तो इस तरह का एक मैप लगाया हुआ था। तो वो बंदा जब आया ना तो उसने मुझे कहा कि ब्रदर ब्रदर काशिफ कम हियर, तो मुझे बोला, और वो मैप के ऊपर मुझे ऐसे पॉइंट कर, थोड़ी सी उसको अंग्रेजी आती थी, ज्यादा नहीं आती थी। कि देखो तुम ये देख रहे हो ना कि हम किधर हैं, हम यहाँ पर हैं, और देखो यहाँ पे ये जो अमरीका है ना, तो यहाँ पे तो मुसलमान है ही नहीं, मैप में लिखा हुआ था अमरीका में तो मुसलमान ही नहीं होते, बहुत ही थोड़े से थे, बस गिनती में भी नहीं आते। कहते तो देखो ये जो असल ताकत वाले लोग हैं वो तो ये हैं। तो तुम बेटे क्या हमारे बच्चों को अमेरिका में आने के बाद भी तुम यही भी कुरान यही सब पढ़ा रहे हो तो ठीक है, क्या फायदा सब चीजों का ना, इस तरह से उसने बात करी ना। तो मुझे वो याद आ रहा है इस वक्त कि ये कैटेगरी होती थी जो कि बिल्कुल दुनियादार होती थी, और वो बाकायदा कहती थी कि भाई असल तो है ही साइंस टेक्नोलॉजी और दीन की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वो गोरों को कोट भी करते थे और गोरों की बाकायदा इज्जत भी करते थे और उनकी गुण भी गाते थे। ये पुराने जमाने की बात है, पिछली जनरेशन की बात। इस वक्त जो है ना वो एक नई जनरेशन पैदा हुई है। वो नई जनरेशन क्या है, वो नई जनरेशन बड़ी मजे की जनरेशन है, अल्लाह करे आप लोग उनमें से ना हो, ठीक है, नहीं होंगे इंशाल्लाह। वो जनरेशन ये कहती है मैं कोई गोरे को अच्छा नहीं समझता, मैं कोई थोड़ी गोरे से इंस्पायर्ड हूं, मैं कोई थोड़ी गोरे को जो है वो इज्जत देता हूं या देती हूं, ठीक है, नहीं मैं बिल्कुल गोरा गोरा इंस्पायर्ड नहीं हूं, मैं बिल्कुल मैं आई डोंट लाइक देम, आई डोंट लाइक गोरा सर, ठीक है, मैं तो बस अपनी अकल से मैं एक बात कर रही हूं, अपनी अकल से एक बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं गोरा से इंस्पायर होकर बात नहीं कर रहा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो बात कर रहा है ना वो एग्जैक्टली वही बात है जो गोरे से उसने सीखी भी है, लेकिन ये डिनाई कर रहा है कि नहीं मैंने गोरे से नहीं सीखी, मैंने गोरे से नहीं सीखी, मैं तो पाकिस्तानी, मैं तो इंडियन, मैं तो मुसलमान, मैं तो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो ऐसे भी ये भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंस्पायर्ड ही है, बेशक आप गोरे स्किन वाइज गोरे ना हो, ठीक है, लेकिन दिल और दिमाग वाइज आप गोरे ही है। जैसे कि लॉर्ड मुकाले का यही एजेंडा था, लॉर्ड मुकाले ने उसकी कोई मेहनत करी और उसने कहा भी था 19वीं सदी में कि हम ऐसे हिंदुस्तानी पैदा करना चाहते हैं जो कि ऊपर से तो हिंदुस्तानी नजर आए, ब्राउन स्किन वाले हो, ब्लैक स्किन स्किन वाले हो, लेकिन अंदर से वो गोरे हो, और वो इसके अंदर बहुत ज्यादा कामयाब हो चुके हैं कि ऐसी जनरेशन उन्होंने बना ली है। अल्लाह ताला हम सबकी और हमारी औलादों की हिफाजत फरमाए, जो मेहनत करता है वो बच भी जाता है, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हो गए, ठीक है। तो ये थी कि भाई ये जो हमारे सूरज चांद सितारे ना तो ऐसे हैं, लेकिन अब ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कि जो उन्होंने किया ना कि अपने आप को पेश किया, तो ये सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फॉलो करने में या साइंस के फॉलो करने में अप्लाई नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में अप्लाई होता है, ठीक है, कि जहां पर आपको किसी चीज की बुराई साबित करना आसान नहीं है, ठीक है, मुश्किल है, ठीक है, तो वहां पर भी फिर यही अस्लूब इख्तियार करना पड़ जाता है। क्या मतलब, मतलब ये कि एक तो है ना कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला का हुक्म, मैं अमल सू आई युज़ा, जो कोई भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा वो उसकी जजा यानी सजा, यहाँ पे जजा से मुराद सजा है, वो उसकी सजा पाएगा। क्या मतलब, वो पनिशमेंट से नहीं बच सकता, जो कोई भी अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म की नाफरमानी करेगा उसकी सजा पाएगा, ठीक है, लेकिन नजर आता है कि भाई इसने गुनाह किया तो अब उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक अल्लाह ताला का हुक्म है पर्दा करना, ठीक है, अब खवातीन भी क्लास के अंदर होती हैं तो उनका भी फिर रेलेवेंट बातें होनी चाहिए, वरना वो साइंस टेक्नोलॉजी ये सब ज्यादातर मर्दों की रेलेवेंस होती है इसके साथ, लेकिन ठीक। तो अब पर्दा करना कि भाई गैर महरम का आपस में इख्तलात नहीं, पर्दे का मतलब क्या है, बुरका पहनना नहीं है पर्दे का मतलब, ठीक है, सिर्फ बुरका पहन लिया, बल्कि लोगों ने तो शैतान ने तो सर के स्कार्फ को जो है वो पर्दे का नाम दे दिया, कि सर पे अगर सर के ऊपर अगर आपने स्कार्फ डाल दिया तो बस पर्दा हो गया, खत्म बात। तो उन्होंने कहा हिजैब, अमरीका में कहते हैं हिजैब, ठीक है भाई, ये हिजाब नहीं है, हिजाब हिजाब होता है पहले पांचवी आबाद लफ्ज, ठीक है, ये स्कार्फ है, ये सर को तुमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया, ये स्कार्फ है, इसका हिजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखो टर्न कैसी इस्तेमाल कर दी, कुरान मजीद की टर्न, कुरान मजीद की टर्न को जो है वो कैसे, इसको इल्हाद कहते हैं, हम नहीं मानते कि उसको इल्हाद कहते हैं, भाई ये इल्हाद नहीं है तो और क्या इल्हाद है यार, कुरान के मानी जो है उसको तुमने किसी और मानी में इस्तेमाल करने शुरू कर दिया जो कि नहीं थे कुरान के मानी, इसको इल्हाद नहीं कहते तो फिर किस चीज को इल्हाद कहते हो, बस एक कादियानियत इल्हाद है और कुछ इल्हाद नहीं है, वो तो है इल्हाद अल्लाह के बंदे, लेकिन उसके अलावा भी तो 10,000 किस्म के इल्हाद जो है वो हमने बचाए हुए हैं अपनी जिंदगी के अंदर। बहरहाल तो हिजाब जो है वो स्कार्फ पहन लिया, तो भाई ये नहीं है पर्दा, पर्दा तो बिल्कुल सेपरेशन को कहते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है, अब मजबूरी की वजह से घर से बाहर निकलता है, निकलना पड़ता है, या मजबूरी पे नहीं जरूरत के तहत घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो फिर जो है वो हिजाब बिल बुरका जिसको कहते हैं, पूरा ऐसा अबाया हो, ऐसा बुरका हो, ठीक है, कि जिसके जरिए से औरत अपने आप को छुपा करके निकलती है, ठीक है। तो अब जब हिजाब नहीं करती यानी बुरका या प्रॉपर सेपरेशन नहीं करती तो क्या होता है, आसमान से कोई बिजली आती है उसको जला के भस्म कर देती है औरत, नहीं कोई बिजली नहीं आती, कोई जला के भस्म नहीं करते, अच्छा चलो बिजली नहीं आती तो नाउज बिल्ला कोई ऐसा हो जाना चाहिए कि अच्छा देखो हमारे खानदान में तो कजन्स के दरमियान पर्दा नहीं होता है, लेकिन पागल को थोड़ी हुए चले जा रहे हैं, ये पर्दा नहीं है तो अब जो है वो पता नहीं क्या हो रहा है और नाच गाना होना शुरू हो गया एकदम से, और जो है वो कोई बहुत ही गंदी किस्म की बातें करनी शुरू हो गए कजन्स, नहीं बहुत बहुत यानी तमीज से बैठते हैं कजन्स आपस में और तमीज की बातें करते हैं, बदतमीजी की बातें तो करती नहीं, हमारे खानदान के अंदर कोई बदतमीजी की बात नहीं होती भाई, हमारा अच्छा खानदानी बैकग्राउंड है, बिल्कुल सेट है, ठीक है, तो कजन आपस में बैठती हैं, लड़के लड़कियां बैठती हैं और बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं होती, बिल्कुल कोई जो है वो बेहयाई की बात नहीं होती, बल्कि दीन के बारे में बात करते आजकल तो दीन के लेक्चर भी माशाल्लाह अल्लाह रहम करे, ठीक है, वो हमें हाफिज हसान साहब ने एक वीडियो भेजी उसमें वो बातें कर रहे थे, रियासत मदीना जापान में नजर आ गई उनको कहता है जापान में रियासत मदीना मैंने देखी जा करके, ठीक है, तो वो इंटरव्यू लेने वाली खातून जो है जो कि उन सो कॉल्ड आलिम साहब से इंटरव्यू ले रही थी, वो भी वो तो सो कॉल्ड हिजाब भी नहीं पहनी हुई थी, यानी स्कार्फ भी नहीं, ठीक है, और जो ऑडियंस थी उस ऑडियंस में हर किस्म के मर्द और औरतें मौजूद हैं, किसी ने कोई कलरफुल कुछ पहना हुआ है, किसी ने कुछ नहीं पहना हुआ है, किसी ने थोड़ा पहना हुआ है, किसी ने क्या पहना हुआ है, ठीक है, दीनी डिस्कशन हो रही है, और हिजाब जो पुरानी हुक्म हिजाब का है बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी, लेकिन दीन का इल्म हासिल किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो अब इसके अंदर कोई नाउज बिल्ला शर तो नजर नहीं आ रहा कि लोग जो है वो नाउज बिल्ला कुछ और हरकतें करना शुरू हो गए वहां पर, तो नाउ हाउ विल यू एक्सप्लेन एक्सप्लेन इट टू पीपल कि भाई बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी तो हो रही है ना, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी तो हो रही है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहे या यहां नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि परवरदिगार के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो और उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मुरतब ना हो, ठीक है, तो ये भी तकरीबन उसी किस्म की सिचुएशन है कि जैसे कि सूरज चांद सितारों की नफी करना कि भाई उनके तो बड़े फायदे नजर आ रहे हैं कि इस तरह से औरत मर्द साथ बैठते हैं तो दीन का इल्म जो है वो और जो है वो आसानी से जो है वो फैलता है, और टीवी के ऊपर रमजान ट्रांसमिशन के अंदर तो दीन और ज्यादा फैल रहा है और लोगों को जो है वो शरी मसाइल भी पता चल रहे हैं, आलिम ऑनलाइन के अंदर जो है वो फतवे भी पता चल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त फायदा हो रहा है, अब मौलवी साहब कह रहे हैं नहीं नहीं इससे फायदा कैसे हो सकता है, इसमें तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, इसमें तो नुकसान ही नुकसान है, कहते आलिम साहब आपको कहाँ नुकसान नजर आ रहा है, हमें तो कहीं नुकसान नजर नहीं आ रहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं,
कहता है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि शेयर की दोनों डेफिनेशन दो रही है, इनके नज़दीक सेपरेशन अगर नहीं है तो शेयर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के अहकाम बदल रहे हैं तो उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो शेयर नहीं दी गई, शेयर कुछ और वही नहीं है, डेफिनेशन बदल रही है।
बिल्कुल सही कहा, शर की डेफिनेशन शैतान ने बदल दी, लेकिन जब दावत और तबलीग करने वाला मुबल्लिग जो है वो उनको ये बात समझाना चाह रहा है ना कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर लो इस वजह से इसके अंदर शर ही शर है, तो अब ये मुबल्लिग को भी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी कि वो कैसे इस बात को आगे तक पहुंचाए, ठीक है, तो अब जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाकर के उनसे ही नहीं कहना कि नहीं छोड़ दो तुम सूरज चांद सितारे की परस्तिश, ये तो दलाल मुबीन है, नहीं कहना इस तरीके से, बल्कि एक केस बिल्ड किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, राइट, केस बिल्ड किया, प्रोजेक्ट बलाउल मुबीन, प्रोजेक्ट बलाउल मुबीन, उसको संजीदगी से लिया, सिर्फ हजरत के मत नहीं मार दिया, हजरत अब आप जाने, आपको काम जाने, आप करें, ठीक है, नहीं, बल्कि अपनी एफर्ट लगाई, अपना अपना दिमाग इस्तेमाल किया, अपना वक्त इस्तेमाल किया उसके अंदर, अपनी फिक्र उसके अंदर लगाई, बल्कि अपनी दुआएं भी उसके अंदर शामिल हाल करे, ठीक है ना, केस बिल्ड किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि बस गलत है छोड़ दो छोड़ दो, वरना गोली मार दूंगा, जैसे कोई बेपरदगी के जो मजलिस हो रही है वहां पे पहुंच गए, मारो भागो, ये वो एक धमाका कर दिया ताकि सब भाग जाए वहां से और बेपरदगी खत्म हो जाए, ऐसे नहीं किया, बल्कि पूरा अपना मतमईन नजर बयान करने का तरीका फिक्र के जरिए से, इल्म के जरिए से। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा कुछ अर्से पहले, एक हिंदू औरत को मीडिया पर कहते सुना कि मैं इंग्लिश भी बोलूंगी तो देसी एक्सेंट में, अंग्रेजी एक्सेंट की कोई अहमियत नहीं, अपना देसी एक्सेंट जिंदाबाद, मतलब वही बात जो आपने फरामी अंदर अंग्रेज सराहत कर चुके हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, इस हद तक हमारे नहीं, आपकी बात समझ नहीं आई थी, ठीक है। तो पर्दे का एक मौजू है कि जिसके अंदर आप नहीं दिखा सकते कि भाई क्या खराबी हो रही है, क्या बुराई हो रही है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्ड केस को जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। उसी तरह से तालीमी निजाम, ठीक है, अब तालीमी निजाम से कितने फायदे हासिल हो रहे हैं आपको, जो है वो साइंस का इल्म हासिल हो रहा होता है, आपको लैंग्वेजेस का इल्म हासिल हो रहा होता है, आपको जो है वो टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल हो रहा होता है, फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो आपको अच्छी जॉब मिल रही होती है, ठीक है, और आपको जो है वो मुआशरे के अंदर इज्जत मिल रही होती है, अब कोई आके ऐसी बोलना शुरू हो जाए, तालीमी निजाम खराब है, तालीमी निजाम खराब है, तालीमी निजाम खराब है, छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको, तो ये तो ऐसे ही हो गया ना कि जैसे आप बुतों के बारे में कह रहे हैं बलाल मुबीन, भाई कुछ दलाइल लेकर के आने पड़ेंगे, कुछ जो है वो आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई तालीमी निजाम है तो क्यों खराब है, अगर खराब है तो क्यों खराब है, राइट, कोई मुत्तफिकुन अलैह ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि देखो तुम भी तो इस बात को मानते हो ना, मैं भी इस बात को मानता हूं, तुम भी इस बात को मानते हो, तो फिर अब तुम्हारी अकल और मेरी अकल दोनों एक लॉजिकल इन्फ्रेंस निकाल रही है कि भाई जब ये बात ऐसी है तो फिर इसका नतीजा यही निकलेगा, क्या मतलब, जैसे कि अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई कि तालीमी निजाम की बुराई के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे तो अनफॉर्चुनेटली बहुत दीनदार लोग भी तालीमी निजाम को जो है वो सूरज चांद सितारा समझते हैं, काबिल इबादत समझ के बैठे हुए हैं तालीमी निजाम को, इस काफिरों के बनाए हुए तालीमी निजाम को, नहीं बस ये बहुत अच्छा तालीमी निजाम है, बस इसमें से म्यूजिक एंड डांसिंग निकाल दो सारा मसला हल हो जाएगा और एक फायदेमंद बन जाएगा, ठीक है, तो अब दीनदारों को कैसे समझाएं भाई कि नहीं भाई ये तालीमी निजाम म्यूजिक एंड डांसिंग निकालने से ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं बन सकता, और उनको कैसे समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से कि भाई जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा का जो बनाया हुआ तालीमी निजाम था उससे पढ़ करके निकले हुए लोगों को तुम भी तो मानते हो ना, कोई नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ नहीं हो सकते, मौलवी साहब मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को कि सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम का जो बनाया हुआ तालीमी निजाम था क्या उससे पढ़ने वाले लोग जो है वो सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो सकते हैं, क्या वो अल्लाह और रसूल के खिलाफ हो सकते हैं, मौलवी साहब जवाब क्या देंगे, वो तो मौलवी साहब के लेवल से गिर जाएंगे अगर वो जवाब दे के हाँ हो सकते हैं, अहले सुन्नत से ही बाहर निकल जाएंगे, फिर तो वो शिया बन जाएंगे, क्या ख्याल है, और वापस में से शामिल हो जाएंगे अगर वो कहें कि हाँ सहाबा जो है वो नबी के खिलाफ थे, क्या बन जाएंगे फिर, वापस बन जाएंगे ना, शिया बन जाएंगे ना फिर, तो मौलवी साहब फंस गए थे, मौलवी साहब से मेरी मुराद आलिम दीन नहीं है, हमारे काफरीन हरगिज यहाँ पर मुराद नहीं, बल्कि हमारे जैसे सूडो मौलवी साहब दाढ़ी उगा दी मौलवी बन गए, ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात के सिपाही सहाबा वाले बन गए, एकदम से दाढ़ी उगा दी तो सिपाही सहाबा बन गए, सहाबा की अजमत, सहाबा की अजमत, सहाबा की अजमत, बताओ ना सहाबा की अजमत, ठीक है, तो अब फंस गए, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम के तालीमी निजाम से पढ़ करके जो निकला हो वो नबी के खिलाफ हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मियां साहब फिर जो काफिर के तालीमी निजाम से पढ़ के निकला हो वो काफिर के खिलाफ कैसे हो सकता है, वो काफिर के खिलाफ कैसे हो सकता है, वो कुफर के खिलाफ कैसे हो सकता है। मौलवी साहब फंस गए, फंसाना पड़ता है अगले बंदे को, इंटेलेक्चुअली उसके निकलने के रास्ते बंद करने पड़ते हैं। ये हमारा करने का काम है, हिदायत देना हमारा करने का काम नहीं है, उसको फंसाना हमारा करने का काम, उसको इंटेलेक्चुअली उसके निकलने के रास्ते बंद करना ये हमारा करने का काम है, ये हमारा करने का काम है। क्या हम ये काम कर रहे हैं? हम ये काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से तालीमी निजाम का मसला हुआ, या जो है वो आपका पर्दे का मसला हुआ, या जो है वो और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि औरत का रोल, अल्लाह ताला ने औरत का रोल बनाया, ठीक है। अब कोई मानने को तैयार ही नहीं, दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार मानने को तैयार नहीं कि भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने औरत का ये रोल बनाया है, तुम उसको जो है वो बगैर उसके रोल के लिए एजुकेशन दिए हुए, ट्रेनिंग दिए हुए, तुम उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में पुश कर देते हो और फिर उससे कहते हो कि गो फिगर इट आउट ऑन योर ओन, गो फिगर इट आउट ऑन योर ओन कि तुमने अब क्या करना है। राइट बच्चों, आपके सामने बराबर वाले घर में बात हुई थी ना, हमने तहरीक चलानी है, बॉयज राइट्स तहरीक, ठीक है, कि जिस तरह आप गर्ल्स को कोई तालीम नहीं देते और उससे ये कहते हैं कि शादी के बाद तालीम हासिल करना शुरू करना, उसी तरह से हम भी यही करेंगे। हम क्यों जाएं स्कूल, हम क्यों जाएं किताबें पढ़ें, हम क्यों जाएं जाए वो तालीम हासिल करें, हम नई तालीम हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा जो रोल है जब हम बड़े हो जाएंगे फिर हम तालीम हासिल करना शुरू करेंगे उस रोल के बारे में। ये सारी लग्जरी जो है आपने औरतों को क्यों दी हुई है? मैं मजाक कर रहा हूँ, सच संजीदा नहीं हूं, समझा रहा हूं किसी बात को। ये सारी लग्जरी जो कि असल में जुल्म है औरत के साथ, जो कि असल में हमारी बेटियों के साथ जुल्म है, जाहिर सी बात है बच्चों को भी अगर आप स्कूल नहीं भेजें, तालीम हासिल ना करवाएं, तो बच्चे कहेंगे लग्जरी है हमारे लिए, हमें पढ़ना नहीं पड़ता, हमें जो है बार बार खेलने कूदने की इजाजत है, तो वो बच्चा तो समझेगा कि लग्जरी मेरे लिए, मेरे लिए तो बड़ा मजा आया ये। लेकिन अकलमंद इंसान, इल्म वाला क्या समझेगा कि भाई ये जुल्म है इसके साथ। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब इसकी शादी का वक्त आएगा, जब इसको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा, इसको कुछ समझ में नहीं आता होगा। फिर अगर हमने उसको किसी दफ्तर में लगवा भी दिया, पाकिस्तान में बहुत होता है दफ्तर में लगवा देते हैं, ठीक है, आता जाता कुछ नहीं है, दफ्तर में शोर सिफारिश के जरिए से लगवा देते हैं, अब वो वहीं पे सीखना शुरू करता है, वहीं पे इल्म हासिल करना शुरू करता है, वहीं पे ठोटे खा खा करके, मर मरा करके, पिट पिटा करके, या दूसरों को मार मुरा करके, है ना, वो इल्म हासिल करता है, फिर वो अपना मुकाम बनाता है। क्या हमारी बेटियों के साथ हम ये नहीं करते? क्या हम अपनी बेटियों के साथ ये नहीं करते? अपनी बहनों के साथ क्या हम ये नहीं करते? क्या हमारी माओ के साथ ये नहीं हुआ कि हम तालीम का जो वक्त था उस वक्त उसको डॉक्टर बनना सिखा रहे होते हैं, उस वक्त उसको इंजीनियर बनना सिखा रहे होते हैं, उस वक्त उसको साइंसदान बनना सिखा रहे होते हैं, उस वक्त उसको जो है वो फाइनेंशियल प्लानर बनना सिखा रहे होते हैं, उस वक्त उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना सिखा रहे होते हैं, और जब उसकी जिंदगी का हकीकी रोल शुरू होता है कि जो अल्लाह ने, उसके परवरदिगार ने, उसके खालिक ने बनाया था, जब वो रोल शुरू होता है, तो अब उससे कहते हैं बच्चू अब तुम पिट पिटा के या झगड़ा लड़ाई करके सास के साथ, नंदों के साथ, शौहर के साथ, हत्ता के बच्चों के साथ लड़ाई दंगा फसाद करके तुम अपना मुकाम बनाओ, वहीं सीखो तुम जा करके, हम तुम्हें कुछ सिखा के नहीं, हमने तो तुम्हें इंजीनियर बना दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया हमने, हमने तो तुम्हें फलानी डिग्री दिलवा दी, अपना फर्ज पूरा कर लिया हमने। तो भाई इन दलायल के साथ हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, हमें पीछे पड़ना पड़ेगा बेवकूफों के, जो कि इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये अपनी औरत जात के साथ अपने मुआशरे की 50% से ज्यादा जो हमारा सुतून है इस मुआशरे का, उसके साथ हम कितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, धोखा देने के लिए शैतान आ जाते हैं, तुम पायलट बन सकती हो, वो खुश हो जाती है, मैं पायलट बन, ओहो मैं पायलट बनूंगी। वो आगे शैतान आके कहते हैं तुम जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकती हो, देखो वो अमेरिका में न्यूक्लियर साइंटिस्ट औरत है, तुम जो है वो मुल्क की सरबराह बन सकती हो, देखो फलाने मुल्क का सरबराह जो है वो औरत है, तुम इतनी कामयाब डॉक्टर नहीं बन सकती हो, देखो फलानी इतनी कामयाब डॉक्टर नहीं है, अब तो आलिमा भी बन गई है सारी की सारी। ठीक है, वो खुश हो जाती है कि अच्छा मेरी जिंदगी का मकसद तो पायलट बनना था, मेरी जिंदगी का मकसद तो ये बनना था, वो बनना था। ना इंसान बन पाती है ना औरत बन पाती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने चुनाव क्या फरमाया था आज से 150 साल पहले तकरीबन, कि जब वो ये तालीम हासिल कर लेती है ना लॉर्ड मुकाले की तालीम, अब वो औरत नहीं रहती है फिर। अब तुम्हें अगर शादी करनी है ना औरत वाला तुम्हें चाहिए ना, तुम जाओ जाओ फ्रांस से कोई फ्रांसीसी मेम लेकर के आ जाओ, वो भी तुम्हारी वो जरूरत पूरी कर देगी बस। अब वो औरत रही नहीं है उसके बाद फिर। क्या जहालत है, क्या जुल्म है, क्या बर्बरियत है जो कि हमने औरत जात के साथ करवा रखी हुई है। ठीक है, कौन समझाएगा ये बातें, एक पागल इंसान बोले चले जा रहे हैं, और बाकी सब जो है मसलहत आमेज रवैया, मसलहत है नहीं बोलना इसके बारे में तो हमें। ठीक है, तो भाई जुल्म को रोकना है, समवेयर इट हैज टू स्टॉप, इट हैज टू स्टॉप। दाढ़ियां उगाने से है ना जन्नत नहीं मिलती, वो अबू जहल की भी दाढ़ी होती थी और यहूदियों की दाढ़ी आपसे ज्यादा लंबी होती है, और सिखों की भी दाढ़ी जो है आपसे ज्यादा लंबी होती है। दाढ़ी पे जन्नत नहीं मिलती, अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह का हुक्म समझने पर जन्नत मिलती है, अल्लाह के बनाए हुए निजाम के तहत रहने पर जन्नत मिलती है, उसके खिलाफ जाकर के अपना निजाम बना करके और जो है वो मुसल्ले की इबादतें कर रहे हैं, अपना निजाम बना करके मुसल्ले की इबादतें कर रहे हैं, अपना निजाम बना करके जो है वो उमरे कर रहे हैं, अपना निजाम बना करके अल्लाह के निजाम के खिलाफ जा करके और शौक से ही नहीं मजबूरी बल्कि शौक से जा करके अपना निजाम बना करके नेकियां कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं, और अगर मुझे जन्नत मिलेगी रेड कारपेट वेलकम के साथ। ये धोखा है शैतान का, ये दजल है, ये फरेब है, ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक्य से हमें ये सबक हासिल करना है कि हमें दावत और तबलीग के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है, और अपना केस बिल्ड करने की जरूरत है, केस बिल्ड करने की जरूरत है, वरना पछतावे क्या होवत, अभी पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले ही सारा खेत चुग चुकी हैं, अब जो नया खेत आ रहा है वो भी चुग जाएंगी, पहले भी चुग चुकी, जंग में जा चुका सारा का सारा मारा मुआशरा, अब जो आगे आ रही हैं पैदा हो रही हैं वो भी गई अगर हमने अपनी मेहनत नहीं करी तो। फरमाया कि हकीमाना अंदाज में सरीह खिताब से परहेज फरमाया ताकि वो जिद पर ना आ जाए। इससे मालूम हुआ कि मुसल्लिह और मुबल्लिग का सिर्फ ये काम नहीं कि हर बात को जिस तरह चाहे कह डाले, बल्कि इस पर लाजम है कि ऐसे अंदाज से कहे जो लोगों के लिए मुअसर हो। तो इस मुअसर को हमने क्या बना लिया है, शुगर कोट करके लोगों के लिए मुअसर वो बात होगी जितनी चीनी लगाएंगे ना उसके ऊपर, जितनी चीनी जितना शुगर कोट करेंगे उतना मुअसर होगा वो। भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट आई डोंट एग्री विद दैट, मैं तो बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता कि जितना तुम शुगर कोट करके बात आगे करोगे उतना ज्यादा मुअसर होगी। भाई दलायल से बात मुअसर होती है, शुगर कोट करने से क्या होता है अगले बंदे को कख समझ में नहीं आ रही कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, मौकफ ही वाजे नहीं हो रहा, सही गलत ही वाजे नहीं हो रहा कि भाई है क्या सही क्या गलत है, मैंने करना क्या है, बस फदाइल फदाइल फदाइल के बारे में बातें करनी, चलो भाई चलो आगे करो इबादतें, अपने चक्कर काटो और टक्करें मारो और तुम्हारी जिंदगी इसमें कट जाएगी। एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, माशाल्लाह क्या बात है, और जुल्म जो है वो चला चला जा रहा है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये इसका हरगिज मतलब नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुगर कोट नहीं किया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अच्छे तरह से दलाइल प्रेजेंट किए थे। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी इसके ऊपर मेहनत और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, खुद भी इल्म हासिल करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और उनको फिर अच्छे अंदाज में दलाइल के साथ आगे प्रेजेंट करके हम बलागुल मुबीन के फरीजे को अंजाम देने के काबिल बने। اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آن لائن حضرات و خواتین سے آج معذرت کی, بھئی آپ کے اوپر زیادہ میں فوکس نہیں کر سکا, پتہ نہیں میسیجز آئے کچھ میں نہیں دیکھ سکا, لیکن وہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس لائیو آڈینس کافی ساری ادھر موجود تھی. ان شاء اللہ کل سے ایسا نہیں ہوگا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
بریک ٹائم ہے
ہاں بریک ٹائم ہے اور اس میں ہم نہ تو بات سن لے سکتے, تلاوت تو بریک ٹائم.